शिवानंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की, अपन पिछले दिनों से लगातार अनुपेक्षा या भावना के बारे में विचार कर रहे हैं। भावना हमारे भावात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम भावना और विचार इन दोनों में जीते हैं। विचारों को जब हम संतुलित करते हैं, जब हम विचारों को दिशा देते हैं, उनके साथ हम अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं, तब वे विचार समीचीन हो जाते हैं। विचार ही हमें पतन के लिए कारण बनते हैं, विचार ही हमारे उत्थान के लिए कारण बनते हैं, क्योंकि विचार ज्ञान की परिणति है और ज्ञान को जल की उपमा दी गई है, इसलिए विचार भी जल की तरह हैं, जो अगर मिट्टी में गिर जाते हैं तो वे ही कीचड़ बन जाते हैं, और अगर कीचड़ लग गया हो तो वही पानी उस कीचड़ को धो भी देता है। विचार जो पतन की तरफ ले जाने वाले हैं, अगर थोड़ा सा संभाल लिया जाए तो वे पतन से बचा करके उत्थान की तरफ भी ले जा सकते हैं। इसलिए विचार बहुत कीमती चीज है, और ऐसा विचार जो भावनाओं से समृद्ध है, जो भावनाएं जिसके साथ में है। विचार भावना कब बनता है? जबकि विचार को टेम्परिंग किया जाए, जबकि विचार बार बार हो किसी भी चीज का। इसलिए अनुप्रेक्षा यह काम करती है कि हमें हमारे विचारों को भावना से जोड़ करके और उन्हें समीचीन बनाती है। विचार अगर व्यक्ति के मजबूत हो तो माना जाता है कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल है। इच्छा शक्ति बढ़ाने की अगर कोई प्रक्रिया लोग बार बार पूछा करते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति या कि हमारी संकल्प शक्ति, विल पावर जिसको कहते हैं, वो कैसे बढ़े? विल पावर बढ़ती अनुप्रेक्षा के द्वारा। जब एक ऐसी समझ जिसके साथ हमारी अनुभूति जुड़ी हुई है, वो हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाती है। उपवास करने का मन तो होता है पर हिम्मत नहीं पड़ती है। क्या उपाय है? उपवास के बारे में अपने विचार हम बदल दें, क्योंकि हमारे विचार उपवास के बारे में ये हैं कि हमने कई लोगों को उपवास करके और शाम को तकलीफ पाते हुए देखा है, या कि आकुल विकल होते देखा है, और हमारे भीतर एक विचार बन गया और वो विचार इतना अधिक गहरे में चला जाता है कि फिर हम कभी उपवास की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हम क्या करें? इस विचार को परिवर्तित करें। हम अपने अनुभव से देखें। हम अपना अनुभव, हमारा अनुभव तो है नहीं उपवास का, क्या करेंगे? आज 11 बजे तक तो मैं वैसे ही खाना नहीं खाता हूं, आज 12 बजे तक नहीं खाऊंगा, एक घंटे देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। मैं देखता हूं कि 12 बजे तक मैं नहीं खाऊं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं 3 बजे दोपहर तक नहीं खाऊं तो देखूं क्या होता है। नहीं खाऊंगा तो मैं देखता हूं कि 3 बजे दोपहर तक भी मैंने नहीं खाया है तो कोई विशेष फर्क नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं 6 बजे शाम तक नहीं खाऊंगा आज, तो ये नहीं सोच रहा हूं कि मैंने 12 घंटे से नहीं खाया है। नहीं, 3 बजे तक तो मैं वैसे ही सोच लिया था कि नहीं खाना है, 3 घंटे और, 11 बजे तक तो मैं वैसे ही नहीं खाता था, 1 घंटे और, 12 बजे तक नहीं खाया, कौन सी विशेष बात हो गई? और मैंने शाम तक देखा कि 6 बजे तक मुझे कोई आकुलता नहीं हुई, अब रात ही तो बाकी रह गई है, दिन तो निकल ही गया है, रात में तो मैं वैसे ही नहीं खाता हूं, रति भोजन का तो मेरा त्याग ही है भाई, पहले से ही है मेरा ये संकल्प, और मैंने रात भी निकाल दी। और सुबह सुबह अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या उपवास करना आसान है, मैं बहुत ठाट के साथ, बहुत हर्ष के साथ कहूंगा कि बिल्कुल आसान है। और इसके पहले अगर कोई पूछता मुझसे तो मैं कहता कि बहुत कठिन चीज है, इसमें मत पढ़ना तुम। ये मैंने देखा है कि लोगों को शाम को हमारी विल पावर कैसे बढ़ गई, किसने बना दी? अंडरस्टैंडिंग विद विजुअलाइजेशन। हम ऐसी जानकारी हासिल कर रहे हैं जो हमारे अपने अनुभव से प्राप्त हुई है, हमारे बार बार विचार करने से हमें प्राप्त हुई है। ऐसे हम अपनी संकल्प शक्ति को इन विचारों को सम्यक बना के, समीचीन बना के, अनुप्रेक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लेता है वो इन अनुप्रेक्षाओं को ठीक ठीक जी पाता है। मानिएगा, संकल्प शक्ति अनुप्रेक्षा से बढ़ती है, और अनुप्रेक्षा संकल्प शक्ति के बिना नहीं होती, वरना पंखे के नीचे आराम से बैठ करके और 12 भावना पढ़ लेना बहुत आसान सी चीज है। लेकिन 12 भावनाओं से होकर के गुजरना, जो पिछले दिनों हम कह रहे हैं, जो पिछले दिनों से हम लगातार उस प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, उस प्रक्रिया को आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है कि बारह भावना जो राजा राणा छत्रपति है आराम से आकर के और पढ़ ली। और जब भी कोई पीड़ा हमारे शरीर पर या कि हमारे आसपास हमारे साथी पर या कि किसी भी जिस चीज को हमने अपना माना है उस चीज पर अगर पीड़ा आती है तो वो हमारे तक क्यों आती है? क्योंकि हमारी अनुप्रेक्षा मजबूत नहीं है, वो सिर्फ हमारे शब्दों तक है, वो हमारे भावनाओं तक नहीं पहुंच पाई है। हमने पिछले दिनों अनुप्रेक्षा करी किस बात की कि जो जो चीजें हमारे पास हैं देखें तो जरा वे कैसी हैं। मैं तो सोचता हूं बहुत दिन तक टिकेंगी, पर मैंने देखा, मैंने अपने अपने अनुभव से देखा और अनुभव भी मेरा ऐसा कि मैं वाच कर रहा हूं, बहुत सजग होकर अनुभव कर रहा हूं ताकि वो अनुभव मेरी अपनी संपत्ति बन जाए, मैं उसे रख लूं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके लाए, ढेर लगा के रख दे, क्या होगा? दो चार दिन के बाद सड़ जाएंगे वो, उनका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। आप कोई व्यक्ति माला बना ले तो कुछ दिन पहनी जा सकती है, सूख भी जाएगी तो भी बदबू नहीं देगी, इतना तो हो सकता है माला बनाने पर। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उन फूलों को इकट्ठे करके उनका एसेंस निकाल लेता है और अपने पॉकेट में रख लेता है, कई दिन तक जब चाहे वो निकाल ले थोड़ा सा और सूंघ ले और आनंद ले ले। हम अपने अनुभव को अनुप्रेक्षा के द्वारा एक ढेर नहीं लगाते हैं, नहीं, हम अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने अनुभवों को एक माला में पिरो लेते हैं। और इतना ही नहीं, हम उससे कोई एसेंस निकाल के अपने पास रख लेते हैं, जब कभी कोई ऐसी घटना घटित होती है हम फौरन निकाल लेते हैं उसको, एसेंस को। हम अपने अनुभवों को अगर इस तरह से संचित करें, मैं देखता हूं कि मेरे चारों तरफ जो कुछ भी है मैं उसे शाश्वत मान के चलता हूं पर वो नष्ट हो जाता है, मैं देखता हूं कि जिसका सहारा खोजता हूं वो मुझे छोड़ देता है और वो उसकी मजबूरी है। बेटा कितना सहारा दे सकता है माँ को, आखिरी समय दवाई दे सकता है, पानी दे सकता है, सांस तो नहीं दे सकता। मैं शरण खोजता हूं लेकिन ये सारे लोग मजबूर हैं, मुझे अंततः अशरण कर देते हैं, मुझे इनकी शरण नहीं लेनी है। फिर मैं संसार की तरफ आंख फैला के देखता हूं तो जिस संसार में मैं रहता हूं उस संसार के बारे में मुझे जानना चाहिए कि ये सिर्फ एक आने जाने का क्रम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और आने जाने के क्रम में कितनी पीड़ा होती है ये भी मैं इस बात का एहसास करूं, हालांकि मुझे इस पीड़ा का एहसास नहीं है कि जब मैं आया था तब कैसी पीड़ा मैंने भोगी थी, मैं भूल जाता हूं। जाते समय भी मौत आने से पहले मैं घबरा के मर जाता हूं, उस पीड़ा का एहसास करने से डरता हूं, पर इसका अर्थ है कि होती तो पीड़ा है जन्म की भी और मरण की। यह संसार सिर्फ जन्म मरण की पीड़ा और बीच में बुढ़ापे की और बहुत सारे अभावों की पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। मैं ऐसा संसार के बारे में विचार करता हूं, निरंतर विचार करना पड़ेगा 24 आवर्स। जैसे कि अभी यहां पर कोई बच्चा रोए तो आपके मन में क्या विचार आएगा, उठाओ इसको बाहर करो। और आप उसी में ये ला सकते हैं कि जब मैं ऐसा था तब मैं भी ऐसा ही रो पड़ता था और माँ मुझे संभाल लेती थी, और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं उसी माँ के प्रति कितना दुर्व्यवहार करता चला गया। अरे यही संसार है, हो गया काम, इतना इतना ही पर्याप्त है। अरे यही संसार है, यहां पर एक दूसरे के प्रति मोह के वशीभूत होकर के और हम उपकार अपकार सब करते हैं और अंततः जो है दुखी पाते हैं, ये संसार है। ऐसा विचार और कुछ रटा रटा है नहीं भैया, कि वो जो दो लाइनें लिख दी हैं बस उतनी विचार करना है अपन को, कि बारह भावना में जो दो लाइन लिखी हैं कि चौं गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सुखभूम बैठे हैं, कोई से पूछे कि पंच परिवर्तन को स्वरूप क्या हो, चार गतियों को स्वरूप का है, सो पूछेंगे बैठ कर। लेकिन हम तुरंत विचार कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के संसार के बाबत विचार कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी स्वाधीनता का विचार। मैं एक अकेला हूं लेकिन असहाय नहीं हूं, मैं स्वाधीन हूं, मैं चाहूं तो अपना कल्याण कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपना पतन तो कर ही रहा हूं। यह स्वाधीनता का विचार ये चौथी भावना है। और जो कुछ भी मेरे आसपास है वो मेरे से पृथक है, इस बात का भी विचार करना पड़ेगा। अभी तो मैं एक नेक होकर के मान लेता हूं कि जो जो चीजें हैं, शरीर तो मेरे एकदम निकट है, मैं उससे अपने को पृथक मान ही नहीं पाता हूं, तो मैं विचार करता हूं, निरंतर विचार करता हूं कि नहीं शरीर अलग है, मैं इसे लिटाता हूं, मैं इसे खिलाता पिलाता हूं, मैं इसे नहलाता धुलाता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं हूं, ये मेरे से पृथक है। ऐसा निरंतर विचार करना ये अपने अन्यत्व अनुप्रेक्षा में इस शरीर की अपवित्रता के बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र है, जो चीज जैसी है उसका वैसा विचार करना ही चाहिए, यही अनुप्रेक्षा का काम है। हम जो चीज जैसी नहीं है वैसा विचार करते हैं या कि जो चीज जैसी है वैसा विचार नहीं करते हैं, अनुपेक्षा हमें दिशा देती है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा विचार करिए, जो चीज जैसी नहीं है उसके बारे में भ्रम तोड़िएगा। ठीक ठीक विचार करने की प्रक्रिया है। तो अपवित्र है तो अपवित्र विचार करना पड़ेगा। फिर मेरे अंदर कुछ संस्कार पड़े हुए हैं, वे संस्कार कैसे आते हैं? क्या मैं ऐसे संस्कार हमेशा से लेकर के आ रहा हूं? हाँ, मैं ऐसे संस्कार हमेशा से लेकर आ रहा हूं। और क्या मेरे हाथ में है कि मैं इन संस्कारों को आने में सहयोगी बनता हूं, और मैं चाहूं तो इन संस्कारों को नहीं आने दूं? ऐसा कॉन्फिडेंस, अगर ऐसा विचार आता है कि ठीक तो है, मेरे सारे संस्कार मैंने बनाए हैं, मैं इन संस्कारों को रोज निर्मित करता हूं अपने मन वचन कर्म के द्वारा और अपनी इंडल्जेंस के द्वारा, अपनी कषायों के द्वारा इन संस्कारों को रोज रोज अपने साथ अटैच करता हूं, रोज रोज मैं कर्मों का आश्रय और बंध करता हूं, ऐसा विचार निरंतर करना, और मैं चाहूं तो एक अपने तारों तरफ शील बना सकता हूं, मैं कम से कम बुरे संस्कारों तो को तो अपने भीतर नहीं आने दूं, इतना तो कर ही सकता हूं। अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों से मुक्त मैं हो सकता हूं, पर कम से कम पहले बुरे विचारों से मुक्त होने के लिए मैं कोई प्रयास करूं। क्या प्रयास हो सकता है? बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। अब वो सारे प्रयास संवर में आ जाते हैं कि आप कैसे अपने संस्कारों को रोकते हैं, कैसे संसार के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को कैसे कम करना, और जो मुक्ति के संस्कार हैं उन संस्कारों को पाने के लिए कैसी ललक हमारे भीतर होना, ये हम आसानी से विचार कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर संस्कार पड़ गए हैं, जो अनकॉन्शियस में हमारे डिपॉजिट हो गए हैं विचार, जो मिथ्या विचार हैं, जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो बुरे कर्म हैं, क्या उनको मैं हटा सकता हूं? मैं हटा सकता हूं, हटाता ही हूं, वे अपने आप अपना फल दे के चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं ऐसे में, जबकि वे अपना फल दे के स्वयं चले जाते हैं? लेकिन उनके साथ एक चीज मैंने देखी, अपने अनुभव से कह रहा हूं आपसे, आप भी रोज देखिएगा कि जब जब ये कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, तो मुझे विचलित कर देते हैं। क्या इनमें ऐसी ताकत है? नहीं, इनमें ऐसी ताकत नहीं है। मैं स्वयं विचलित हो जाता हूं इनके उदय में। मैं अगर कोई बुरा कर्म उदय में आता हूं तो संक्लेशित हो जाता हूं, कोई अच्छा आता तो हर्षित होता हूं। और ये मेरा जो अहंकार और दीनता है ना, ये मुझे आगे के लिए और नए कर्म बांध के चली जाती। मैं क्या उपाय करूं? उपाय बहुत आसान है, मैं इन कर्मों के आने पर समता धारण करूं। समता से बड़ी संबर और निजरा की कोई प्रक्रिया नहीं है। बड़े से बड़ी प्रक्रिया अगर समता संबर और निर्जरा करने की, संसार से पार होने की है, तो इन सब कर्मों के उदय में मैं समता रखूंगा। कर्म के उदय में समता रखने से कितने लाभ होते हैं मुझे, मैं रोज देखता हूं। बड़े से बड़ा जैसे कि क्रोध आता है, मैं समता रख लेता हूं तो क्रोध अपना फल नहीं दे पाता है, वो बिना फल दिए चला जाता है। एक तो फल नहीं दे पाता, एक लाभ ये होता है, दूसरा ये कि वो चला भी जाता है, और तीसरी बात ये है कि अगर मैं गुस्सा कर लूं तो ये नया गुस्सा का संस्कार मेरे भीतर बैठ जाता है, तो ये नया संस्कार भी मेरे भीतर नहीं बैठ पाता। और बड़ी से बड़ी तो बात ये है कि गुस्सा नहीं करता हूं तो बात नहीं बिगड़ती है। तो चार बातें बड़े बड़े लाभ हो जाते हैं अगर मैं इस तरह से समता रख लेता हूं। ऐसा रोज मैं देखता हूं, ऐसा मैं विचार करूं अगर, तो मेरे निर्जरा अनुपेक्षा तो रोज हो सकती है। मैं यही तप, बड़े से बड़ा तप रोज कर सकता हूं। मैं जितनी आकांक्षाएं करता हूं उतने कर्म मेरे पास आते हैं, क्यों ना मैं इन आकांक्षाओं को कम करूं? इच्छा निरोधा तथा तप की परिभाषा बड़ी हो सकती है, लेकिन इच्छाएं तो मैं रोज करता हूं। इनको कम करना ज्यादा करना मेरे हाथ की बात है, इतना तो मैं आसानी से तप नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, भाई तपस्वियों के जिम्मे होगा तप, लेकिन मैं तो इतना कर सकता हूं कि इच्छा कम कर देता हूं, क्योंकि मेरे हाथ की चीज है ये। इतना आसान अगर हम अनुपेक्षाओं को बना सकते हैं, तो अब इसका विचार करें, लोग बहुत बड़ा है, उसमें मेरी अपनी एग्जिस्टेंस बहुत छोटी सी है। पहली चीज, ये लोक अनुपेक्षा, ये लोक के बारे में विचार, शुरुआत कहां से होती? लोक बहुत बड़ा है, मैं बहुत क्षुद्र हूं, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटा हूं इसलिए मैं इस लोक में खो जाऊंगा? नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस फिर भी है। इस लोक के साथ मजा यही है कि यहां वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज द लोक इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स के मायने ये है कि जहां जो चीज एग्जिस्ट करती है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। सत का नाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसको उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता तो नष्ट भी। मैं यहां पर अपने अस्तित्व को लेकर जीता हूं, यहां सब अपने अपने अस्तित्व को लेकर जीते हैं, और मजा यह है कि सारे द्रव इस लोकाकाश में रह करके भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ये लोक अनुपेक्षा का विचार है।
तीस लोक में ये तो अच्छा हुआ कि सोल है, नन सोल है, मीडिया ऑफ मोशन है, मीडिया ऑफ रेस्ट है, टाइम और स्पेस है, जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य रहते हैं एक ही जगह, जहां सूर्य की नोक टिके उतने में ये छह द्रव्य हैं, लेकिन ये छह द्रव्य एक दूसरे के काम में गड़बड़ी नहीं करते हैं और ये अपना अपना काम बिल्कुल आराम से करते रहते हैं। इसमें दो द्रव्य ऐसे हैं जो जरा गड़बड़ में पड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उनमें से एक मैं स्वयं हूं, मैं गड़बड़ में पड़ जाता हूं उस पुद्गल के साथ में, गड़बड़ में पुद्गल भी गड़बड़ में पड़ता है, मैं भी गड़बड़ में, बाकी चारों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता लेकिन अपने स्वभाव को भूल जाता हूं। और स्वभाव को जो व्यक्ति भूल जाता है तो इस तरह से मानिएगा कि स्वभाव एक तरह से नष्ट ही हो गया। स्वभाव आप अन्नता का भवन विभाव, स्वभाव से अन्यथा परमानंद हो जाना ही तो विभाव है। मैं विभाव में जीता हूं, स्वभाव को भूल गया हूं, पर मेरा स्वभाव तो धोखा तो नहीं है, मेरे स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। मैं चाहूं जिस दिन अपने उस स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूं, पानी को गर्म कर दिया गया है लेकिन उसकी शीतलता का जो स्वभाव है वो नष्ट नहीं हुआ है, परिवर्तित जरूर हुआ है। जैसे ही अग्नि का संपर्क दूर होगा वो पुनः ठंडा हो जाएगा, ऐसे ही मेरे कर्म के उदय में जो कि मैं ही करता हूं उसमें मेरे स्वभाव से मैं विचलित हो जाता हूं, विभाव में पहुंच जाता हूं। लिखा हुआ है 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान ताने जीव अनादिते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, भरमत है विन ज्ञान जय लाइन भी लग, बाकी तो तीन बहुत बढ़िया है। भरमत है विन ज्ञान, मैं अपनी अज्ञानता की वजह से अपने स्वभाव को भूल करके भ्रमण करता हूं, होगा 14 राजू बहुत ऊंचा और लोक पुरुष संठान भी होगा और अनादि काल से मैं भ्रमण कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि चौथी लाइन कह रही मेरी कमजोरी को उजागर कर रही है कि भरमत है विन ज्ञान। अज्ञानी भटक सकता है इस 14 राजू उत्तंग लोक पुरुष संठान में, लेकिन कोई ज्ञानी जीव भटके ऐसा संभव ही नहीं है। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है इस अनुपेक्षा के द्वारा, यहां मैं अपने अज्ञान की वजह से भटकता हूं और जिस दिन मैं अपने अज्ञान को छोड़ दूं उसी दिन मैं इस इतने ऊंचे इतने बड़े संसार में जिसमें कि मेरी जरा सी एग्जिस्टेंस है उसमें मैं भटकने से बच सकता हूं, मैं इस अज्ञान को तोड़ करके बच सकता हूं। तीसरी चीज है कि यहां पर हर द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने स्वभाव को दो ही द्रव्य विभाव में परिवर्तित कर देते हैं अपने अज्ञान की वजह से, और ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, मैं इस प्रक्रिया को तोड़ सकता हूं, ऐसी कोई विशेष उसमें मुश्किल नहीं है। और बड़ी से बड़ी बात, मेरी अज्ञानता की वजह से मैं क्या सोचता हूं इस लोक के बारे में, किस लोक को किसी ने बनाया होगा, कोई ब्रह्मा होगा इस लोक को बनाने वाला, कोई इसको संभाले होगा, कोई विष्णु होगा इसको संभालने वाला, और कोई इसको संहार भी करता होगा, कोई शंकर भी होगा, लेकिन किन्हू न करे न धरे को षट द्रव्य मई न हरे को। लेकिन अब मैं देखता हूं, मैं विचार कर रहा हूं कि अगर किसी ने बनाया होता तो फिर ये इतने इतने तरह से बनाएगा तो कितनी आकुलता होगी उसे, तो फिर उस व्यक्ति को मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर कैसे मान सकता हूं। इसका मतलब है कि किसी ने बनाया नहीं है, छह द्रव्य अपने आप इस लोक को बनाए हुए हैं, या कि छह द्रव्यों से निर्मित है ये पूरा का पूरा लोक, और इसे किसी ने नहीं बनाया, न कोई इसे मिटा सकता है, न कोई इसे धारण करता है। लेकिन देखो तो मेरा अहंकार, इतने बड़े लोक को न किसी ने बनाया, न कि कोई धारण करता, न कोई मिटा सकता है, और मैं तो जिस चाहे की सत्ता मिटाने की कोशिश करता हूं, और जब मैं कोई चीज थोड़ी सी भी इजाद कर लेता हूं तो सोचता हूं कि मैं इसका सृष्टा हूं, ये सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, और मैं जरा जरा सी चीजों का सृष्टा बनने का अहंकार कर देता हूं, या कि किसी चीज को मिटाने का अहंकार कर देता हूं कि मैं इसे मिटा दूंगा, ये मेरा अहंकार भी व्यर्थ है, ये मेरी अज्ञानता ही है। क्या ऐसा विचार हम लोकानुपेक्षा करते समय नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। इसका कोई न करता हरता अमित अनादि है, जीव और उद्गल नाचे यावे कर्म उपाधि है, वही चीज है। और ये पूरा लोकाकाश अलोकाकाश में स्थिर है, जिस लोकाकाश को मैं बहुत बड़ा मान रहा हूं वो लोकाकाश भी अलोकाकाश में एक बिंदु के बराबर है, जैसे बहुत बड़ा कैनवास और उसके भीतर एक डॉट रख दिया जाए, उतना ही लोकाकाश है, और उस लोकाकाश में एक डॉट रख दिया जाए उतनी भी मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी मैं इतना अहंकार करता हूं। एक प्रोफेसर थे जो कि फिलॉसफी पढ़ाते थे, फिलॉसफर और साइकोलॉजिस्ट के बारे में ही है कि ये आधे हो जाते हैं, मतलब अब आप समझिए भाषा, मतलब इनका बड़े विचारवान होते हैं, विचारवान व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, उससे हर आदमी डरता है, विचारवान आदमी से डर लगता है। तो एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते लोगों से बोले कि मैं इस विदित विश्व का सबसे टॉप मोस्ट आदमी हूं। उनके स्टूडेंट्स ने तो ऐसे ही मजा लिया, कहना साहब आप हों तो लेकिन आप सिद्ध भी कर सकते हैं फिलोसफी से। हाँ इसमें क्या बात है, अच्छा ये बताओ ऑल ओवर जो कहना चाहिए अर्थ है, जो ग्लोब है, उस ग्लोब में ये बताओ कि जितने भी ग्रह उपग्रह उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? हमारी पृथ्वी, बिल्कुल ठीक है, हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा हमारी पृथ्वी में, तो वो जनाब थे अमेरिका उसमें विदेश में, ये कहिएगा कि मैं उस सिटी का नाम भूल रहा हूं, वो पेरिस में, पेरिस में थे। तो बोले कि उस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जगह तो पेरिस है, किसी ने पूछ नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जगह पेरिस। तो पेरिस में जिस यूनिवर्सिटी में वो थे, फिर उन्होंने कहा अच्छा उसमें सबसे, पेरिस में सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले वो यूनिवर्सिटी जिसमें अपन पढ़ते, और उस यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, बोले दर्शन शास्त्र, और उस डिपार्टमेंट के एचओडी भी मैं खुद, मैंने कहा था ना कि पूरे ग्लोब में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। हम इस तरह से इतनी बड़ी उसमें और अहंकार कर बैठते हैं कि हम शायद सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, यहां पर ऐसे अनंत छह द्रव्य तो है ही, और उनकी कितनी पर्यायें हैं, वे सब एग्जिस्ट करती हैं, मैं अकेला एग्जिस्ट नहीं करता हूं। अगर हम इस तरह का विचार करें तो हमारा अहंकार भी टूटता है और हमें वास्तविकता का बोध भी होता है। लोग के विचार करते समय हम इस विचार को भी साथ में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब भी मैं कोई काम करता हूं तो अपनी करनी आप करे, सिर और के धरता, ये और जरा मुश्किल है इस लोक में। मैं जब भी यहां कोई काम करता हूं और बन जाता है तो कहता हूं कि मैंने करा, और जब बिगड़ जाता है तो मैं कहता हूं किसी और ने करा, ये भी जरा ठीक नहीं है मेरा विचार। लोक के विचार में हमें यह भी शामिल करना पड़ेगा कि यहां जो भी करता हूं मैं उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, कोई और यहां पर जिम्मेदार नहीं है। ना मुझे किसी ईश्वर ने यहां पर बना के भेजा है, ना कोई ईश्वर मुझे यहां से मुक्त कर सकता है, मेरा ईश्वर मैं स्वयं हूं। क्योंकि लोक पुरुष संधान, क्योंकि मैं ही तो अगर अपने कंधे पर हाथ, कमर पर हाथ रख के पैर फाला के खड़ा हो जाऊं, तो इसी प्रकार का तो लोक है, या कि ये कहूं कि मेरे भीतर ही सारा का सारा लोक है, मेरी सृष्टि के लिए जिम्मेदार मैं खुद हूं, ये लोक भी मेरे ही आकार का है और मैं स्वयं इस लोक के आकार का हूं, ये पूरा लोक मेरे भीतर है। लोकानुप्रेक्षा में आखिरी चीज जो आपसे कहूं कि लोक को अपने में देखना और अपने को लोक में देखना, इन दोनों के बारे में विचार करना, अपने भीतर लोक को हम देखते हैं और इस लोक के भीतर अपने को देखते हैं, हमारा अहंकार, हमारी दीनता, हमारा अज्ञान सब लुप्त होता मालूम पड़ता है। एक बार आप इस विचार को करके देखिएगा, ऐसी लोकानुप्रेक्षा। और बहुत छोटी सी चीज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि शायद कभी आपने सुना हो, गीता में जब अर्जुन घबरा गए थे कि ये सब लोग जो मेरे अपने खड़े हुए हैं उनसे मुझे लड़ना पड़ेगा, और अगर गौर से देखें तो इस लोक में लड़ाई किससे है? शत्रु से? जी नहीं, अपनों से लड़ाई है। जूझना पड़ता है अपनों से, जिसको अपना मान लेता है उससे जूझना पड़ता है। कैसे जूझना पड़ता है? उनको लेकर के उनके मोह की वजह से तो जूझना पड़ता है। तो मेरा मोह मुझे यहां पर जूझने के लिए मजबूर करता है, और इस मोह की वजह से कभी कभी मैं अपनों से वैसे कषायदस्त बहुत सारी चीजें करता रहता हूं, लेकिन आमना सामना करने के लिए तैयारी नहीं कर पाता हूं। मुझे अपने मन से ही जूझना पड़ेगा, मुझे अपने मन से आमना सामना करना पड़ेगा। और तब बहुत मुश्किल होता रहे थे अर्जुन कि मेरे अपने सब लोग खड़े हुए हैं, तब समझ गए थे कृष्ण कि मन बोल रहा है, मेरे अपने पराए यहां कुछ भी नहीं है, इसका मोह है जो कि बोल रहा है। उस मोह को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मोह को, वैसे तो हर अनुप्रेक्षा मोह को नष्ट करती है, अनुप्रेक्षाएं 12 ही है ऐसा मत मानिएगा, ये तो बायोकेमिक की 12 दवाइयों की तरह है, फॉर्मूला बना लीजिएगा, जितने चाहे जितने रोग हैं वो सब इससे दूर हो सकते, बड़े से बड़ा रोग है मोह का वो दूर हो सकता है, और जितनी हाई
पोटेंशियलिटी होगी वायु कनेक्ट की उतना जल्दी ठीक होगा। जितनी पोटेंशियलिटी आपके अपेक्षा के दौरान आपके विचारों की हाई पोटेंशियलिटी होगी उतनी जल्दी आप उस मुंह को तोड़ सकते हैं। विराट रूप दिखा करके और मुंह को तोड़ दिया था। ऐसे ही अगर हम अपने में इस पूरे लोक को देखेंगे हमारा मुंह टूट जाएगा, या कि इस पूरे लोक में अपने को देखेंगे तब भी हमारा अल्टीमेटली मुंह टूटने वाला है। एक युवक पहुंचा था साधु के पास में और उससे पूछा था कि कैसे रहूं इस संसार के बीच। तो किसी भी चीज को हम ज्ञान के द्वारा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन अनुभव के द्वारा बताना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि बताऊंगा, आओ मेरे साथ, रोज अपन घूमने चला करेंगे। और वो घूमने जाते थे एक दिन और देखा कि रास्ते में बहुत सारे पानी भर करके बहने माँ लोग लौट रही हैं और झुंड के झुंड लौट रहे हैं और वे एक के ऊपर एक अपने घड़े रखे हुए हैं लेकिन घड़े को पकड़े नहीं है, वो आराम से रखे हुए हैं और हाथ दोनों नीचे हैं और आपस में बात भी करते चले जा। साधु ने युवक से कहा कि देखो इन सबको, इनका घड़ा क्यों नहीं गिरता जबकि उसी के संभाले हैं, बात क्या है? वो बात भी कर रहे हैं आपस में। तो साधु ने कहा कि देखो गौर से, ये सब बात कर रहे हैं इसके बावजूद भी इनकी दृष्टि, इनका लक्ष्य कहां पर है? घड़ों पर है। कितनी भी बात करें, कितना भी यहां से वहां देख लें सब कुछ, लेकिन उनके दिमाग में उस घड़े के प्रति ये बहुत सावधान है। अगर इस संसार में अपने को देखते हो तो अपने लक्ष्य को मत भूल जाना वरना भटक जाओगे। और अपने भीतर अगर इस लोक को देखते हो तब भी अपने को देखने की कोशिश करना। तो पूरा लोक जो एकदम जानी सो सद्दम जानी, जो एकदम अभी न जानी ते सद्दम अभी न जानी। जो एक को अपने आत्मा को देखता है, जानता है, वो अपने में ही सारे लोक को जान लेता है। कैवल्य की प्राप्ति होने पर निज पद में थिर होए लोक के शीष करो वासा। आप चाहें तो अपने में स्थिर होकर के इस लोक के शीर्ष पर भी वास कर सकते हैं। ये लोक पूरा का पूरा आपके भीतर हस्ता मलक वत ऐसे झलक जाएगा, लेकिन उस लोक को अपने भीतर एहसास करने के लिए आपको अपने को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप उसको भूल मत जाइए। और अगर इस लोक के बीच आप विचरण करते हैं तब भी आप अपने को मत भूल जाइएगा, वरना